सबसे बढ़कर तो ये बात है कि श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है। जैसे ये गंगा जी है, उसमें स्नान करने से सब पापों का नाश हो ही जाता है, पर ऐसा एकदम विश्वास होगा तभी नाश होगा। विश्वास नहीं होगा तो गंगा जी की तरफ से कमी नहीं है, आपके विश्वास की तरफ से कमी हुई है। जैसे साकार का ध्यान करना है तो जैसी मूर्ति मंदिर में देखी वैसा ध्यान करो। जैसे विष्णु भगवान का ध्यान करता है वो नहीं होता है तो फिर निराकार का ध्यान कैसे होगा? जिसका जीवन मेरे लिए है, जो हमेशा मेरा नाम रूप गुण प्रभाव का ध्यान करता है, जो प्रेम पूर्वक मुझे भजता है, मैं उसको ज्ञान देता हूं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ऐसा जो अनन्य भक्त होता है उसको ज्ञान मिलता है, मैं साक्षात उससे मिलता हूं। अर्जुन कहता है कि कायरता के दोष ने मेरे स्वभाव को नष्ट कर दिया, मेरा धर्म का ज्ञान नहीं रहा, मैं मूड होकर पूछता हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। ऐसा सोचकर भगवान की आज्ञा का पालन करके चलना चाहिए। साकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो अपने शरीर के समान ही है लेकिन उनका दिव्य शरीर है। श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो शंकर की मूर्ति, राम की व कृष्ण की मूर्ति को एक मर्तबे ऐसा देख ले कि वो मूर्ति सदा ही हमारे सामने खड़ी रहती है। यदि मनुष्य शरीर पाकर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो पशु पक्षी वृक्ष इनके समान हमारी दशा होगी। कबीरा नौबत आपनी दिन दस लेव बजाए, यह पुर पट्टन यह गली बहुरिन देखो आए। बार बार ऐसा मौका थोड़ा ही मिलता है। जिस शरीर के पीछे आप पड़े हो उसकी क्या दशा होगी? हाड जले ज्यों लाकड़ी, केश जले ज्यों घास, सब जगह जलता देख के भय कबीर उदास। आज कल की पांच दिन जंगल होगा वास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घास। दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होइ, संत मिलन और हरि भगति दुर्लभ जग में दोइ। जो न तरे भव सागर नर समाज असपाय, सोकृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। जो मनुष्य ऐसे समाज को पाकर भवसागर से नहीं तरता है वह निंदक है और मूर्ख है। यह शरीर किसी काम आने का नहीं है। अपना तन मन धन परमेश्वर की प्राप्ति में लगा देना चाहिए। जैसे अपने माता पिता कुटुंबी सभी चले गए, आज वो देखने पर खोजने पर कहीं मिलने वाले नहीं है, ऐसे अपने लोग भी ऐसे चले जाएंगे, कहीं पर भी मिलेंगे नहीं। वो दिन याद करो, अवश्य होने वाला दिन है, उसको बेसुधी से भुलाओ मत। हमको परमात्मा ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, ऐसे ज्ञान के रहते हुए अमूल्य जीवन को फिजूल कामों में खोते हैं। ये बड़ा अमूल्य जीवन है। असंख्य कोटि जीवों में 2 अरब मनुष्य हैं, असंख्य कोटि जीवों में भाग्यवान जीवों को मनुष्य शरीर मिलता है। जिस कार्य के लिए मनुष्य जीवन मिला है वह कार्य सिद्ध कर ही लेना चाहिए। याद रखना, यदि अब की बार चूक गए तो करोड़ों दूसरी योनियां भुगतनी पड़ेगी, पता नहीं कितने लंबे समय के बाद मानव शरीर मिलेगा। मनुष्य जीवन में केवी भगवत प्राप्ति ये प्रत्यक्ष फल है, इसलिए मनुष्य को तत्परता के साथ भजन ध्यान करके इस फल को प्राप्त कर लेना चाहिए। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राजविद्या संसार में सबसे पवित्र विद्या है ये। अब करो, अभी फल मिलेगा। प्रत्यक्षावगमम, अभी भगवान का स्मरण करो, शांति मिलेगी। दत्तचित्त होकर सत्संग की बातों को सुनो, शांति मिलेगी। साधन करने में भी सुगम है, इससे धर्म पुण्य होता है, धर्म से समर्थित है, तो फिर देरी कहां हो रही है, तत्परता क्यों नहीं आ रही है? और इससे ज्यादा भगवान क्या कहेंगे कि अरे भाई, सब दौड़ धूप बंद कर, आ जा, तू मेरी शरण में आ जा। जैसे माँ चिल्लाती हो कि बच्चे को तू छोड़, इनको मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। ऐसे भगवान माँ से भी ज्यादा प्रेम रखकर बुला रहे हैं। विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं, मेरे शरण में आने वाला नीच योनि का प्राणी भी, शूद्र आदि है, स्त्री है, ये सब कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। अनित्य और नाशवान क्षण भंगुर शरीर है, मेरी शरण होकर भजन करो। मन मना भव मद भक्तो मदियाजि माम नमस्कुरु मामय वैशेषी युक्तैवम आत्मानं मत्परायणः। सब जीवों को आराम पहुंचाना मेरी सेवा है। एक बार भगवान को श्रद्धा से नमस्कार करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, श्रद्धा से प्रणाम करने मात्र से। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो फिर संसार में आता है, किंतु नमस्कार करने वाला संसार में नहीं आता। अंत समय में ओम श्री कृष्ण राम नारायण शिव जो आपको अच्छा लगे वो नाम आने का अभ्यास अभी से ही करना चाहिए। अभी का किया हुआ अभ्यास अंत समय में सहायता करेगा। और अंत समय में हम नाम ले लेंगे इस भरोसे, यदि आप अभी नाम लेने से चूक गए तो अंतिम समय आपके हाथ की बात नहीं रहेगी। एक क्षण भगवान का ध्यान करने का मूल्य पृथ्वी मात्र के धन के बराबर नहीं है। सारा रुपया अपन मिल जावे, सारो सोनो मिल जावे, चांदी मिल जावे, हीरा मोती मिल जावे, अठने एक क्षण भगवान को ध्यान हुए, बराबरी नहीं हो सके। पर ये बात कहते हैं तो लोगों को जस्ती नहीं है, उनको धन बहुत बड़ा दिखता है, पर ये नहीं देखते कि इस धन को तो छोड़ करके मरोगे और ये ध्यान और नाम का धन साथ में लेकर जाओगे, इतना तो सोचना चाहिए। भगवान के ध्यान में जो आनंद की अनुभूति होती है, तीनों लोकों का राज्य भी उसके सामने एकदम फीका मालूम देता है। इसलिए भगवान की शरण होकर उनका ध्यान करो। भगवान कहते हैं जो नित्य निरंतर मेरा भजन करता है वह साधु मानने योग्य है, साधु रेव स मंतव्य है। जो मुझ परमात्मा को पुरुषोत्तम समझता है वह मुझे भजता है। यो मामेव मसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम। यदि वह पापात्मा है तो भी शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा और शश्वत शांतिम निगच्छति, निरंतर शांति को प्राप्त होता है। जो मेरी भक्ति करता है उसका नाश नहीं होता है, नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान के इतने विश्वास दिलाने पर भी हम लोग पत्थर की तरह बैठे हैं, भजन नहीं करते हैं, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगराए, भैंस के सामने बीणा बजावे हूं भैंस। अरे बीणा रा स्वर देख भाई, कितना बढ़िया स्वर है, मैं भैंस का ही जाने। ऐसे हो गए। भगवान के ध्यान की मस्ती में इंद्र का भोग भी कुत्ते के समान मालूम पड़ता है। भोग की दृष्टि से देखा जाए तो कुत्ते में और इंद्र में कोई फर्क नहीं है। ये अंदर से जिसको विवेक होता है उसकी जो ध्यान में अवस्था बनती है उसी को महात्मा कह सकते हैं। कितना वैराग्य है, अद्भुत अवस्था है। आप लोग वैरागी महात्माओं की बहुत सी बातें सुनते हो, क्या अपने मन में ऐसे वैराग्य होने की इच्छा ही नहीं होती क्या? यदि आपके अंदर हमारे अंदर वैराग्य की इच्छा हो जाए तो उस वैराग्य में इतना सुख है उसकी कोई सीमा नहीं है। वो सुख मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे आनंद को छोड़ करके विषय भोगों में मन लगाना, अमृत का पान करके विष्ठा का पान करना हुआ। गोस्वामी जी तो विष बोलते हैं, पलट सुधाते विष सठ विष ले, हम तो उसको विष्ठा मानते हैं। संसार के भोगों से आपको विष्ठा के समान ग्लानि नहीं होती है, इसका अर्थ है कि आपके मन में अभी संसार का भोग का संस्कार खूब अच्छी तरह से जमा हुआ है। आप लोग ये समझते होंगे कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हम इस अवस्था को कैसे प्राप्त करें। हम कहते हैं जिसको अक्षर का बिल्कुल अभ्यास नहीं है, पढ़ भी नहीं सकता है, लेकिन जिसके अंदर ये वैराग्य है उसको ये उच्च अवस्था प्राप्त हो सकती है। इन बातों को बड़े श्रद्धा से सुनना चाहिए, सुनकर के काम में लेना चाहिए। आश्चर्य तो इस बात का है कि आप लोग घर छोड़कर यहाँ गंगा के किनारे आते हो, समय लगाते हो, सत्संग करते हो, फिर भी विषय भोगों की रुचि नहीं हटती है। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। उस हिसाब से तो हम कुत्ते से भी गए बीते हैं। सेठ जी को अधिकार था भाई, ऐसी बात कहने का अधिकार था उनको। अजी कुत्ता तो मालिक का काम तो करता है, मालिक की हाजिरी भरता है, मालिक की भक्ति करता है, रात भर मालिक का पहरा देता है। इतना कृतज्ञ मनुष्य नहीं होता है। यह सोचो, भक्ति जितनी कुत्ते की मालिक के प्रति है, उतनी यदि हमारी भगवान में हो जाए तो कल्याण पीछे रहेगा क्या? भगवान नाम में, भगवत जप में, भक्ति में, निराकार स्वरूप में, साकार स्वरूप में, गंगा जी में, किसी में तो श्रद्धा करो। किसी में भी श्रद्धा नहीं हो रही है। आप कहीं पर भी विश्वास जमाओ, फिर कल्याण होने में संदेह नहीं है। शास्त्रों से प्रभावित बात है, विश्वास होने पर ही सब बात काम में आएगी। और जितना आपके जीवन में कोई सत्संग की बात आई है तो उसके पीछे आपका उतना विश्वास काम कर रहा है। जो आचरणहीन है, महान पतित है, उनका भी श्रद्धा विश्वास से कल्याण हो जाता है। ये शास्त्र से प्रमाणित है। इन बातों को जोश के साथ काम लेना चाहिए। जिस तरह महाराज युधिष्ठिर धर्म से नहीं हटे, चाहे कुछ भी हो गया डटे ही रहे। कभी कभी तो युधिष्ठिर जी के भाइयों ने ही कह दिया कि आप इस धर्म के ऊपर इस प्रकार से डटे रहते हो, हमको बड़ी तकलीफ होती है। भीमसेन ने कहा कि छोड़ो दुर्योधन की शर्तें, दुर्योधन कोई महात्मा है? क्यों हम 12 वर्ष का वनवास भोगे? क्यों हम अज्ञातवास भोगे? हमारे पास ताकत की कमी है कि ज्ञान की कमी है? किस बात की कमी है? हम तो केवल आपके आदेश के पीछे रुके हुए हैं। देव आदेश, अभी मैं जाता हूं, अकेला इन सबको मार देता हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भीमसेन, तुमको राज्य चाहे तो तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो, पर हम नहीं जाएंगे, राज्य तुम ले लो। भीमसेन ने कहा, ये कोई बात थोड़ी है, मैं राज्य के लिए नहीं बोलता हूं। आप कष्ट पाते हो इसलिए हमारा मन कष्ट में पड़ता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, भीमसेन, धर्म के आचरण में कष्ट उठाना शोभा होता है। ऐसे युधिष्ठिर के समान धर्म में डटे रहो। पातंजलि योग दर्शन में आता है कि वीतराग विषयम व चित्तम, यदि भगवान का ध्यान करो तो है ही, वहां तो बढ़िया बात है। ऐसे कोई वीतराग महापुरुष हो, उनका भी ध्यान करने से सद्गुण सदाचार का भाव पैदा होता है। परंतु लोग इतने में ही संतोष कर लेते हैं कि हमने इन महात्मा का ध्यान कर लिया। जिन महात्मा को आपने प्रत्यक्ष देखा है, उनका आचरण देखा है, उनकी वाणी सुनी है, तो उनका आचरण और वाणी काम में ले ओ, ये महात्मा का सच्चा ध्यान है। कई महात्मा कहते हैं, भाई मेरा ध्यान करो, ये मेरा चित्र है। सेठ जी कह रहे वो तो पाखंडी आदमी, चाहे कोई हो बोले पाखंडी, अपना चित्र देकर अपना ध्यान करवावे वो भगवान का ध्यान हटाने वाला पाखंडी है। कितना साधिकार बोलते हैं सेठ जी, अधिकार पूर्वक। सेठ जी को कहा कई बार लोगों ने, सेठ जी आप इतनी कठोर बात किस बल पर बोलते हो? का भगवान के बल पर बोलते, शास्त्र के बल पर बोलते, पर ये नहीं कहा स्वयं की साधना के बल पर बोलते, ये नहीं कहते। यही महात्माओं के लक्षण है। यह मनुष्य जीवन शेष रहा है वह भी इतना पवित्र बना सकते हो। आज मनुष्य दुख को भी आनंद समझ ले तो फिर दुख रहा ही नहीं। हमको गंभीरता तत्परता से जोरों से ध्यान करने की आवश्यकता है। हम अपने घर में इस प्रकार से रह सकते हैं जैसे महाराज जनक जी रहते थे। बड़ी पवित्रता आ सकती है। ये सारी बातें सोचें, हम राजा जनक के माफिक, तुलाधार वेश्य के माफिक व्यवहार में जीवन निर्वाह करते हुए, सब व्यवहार करते हुए एकदम निर्लिप रह सकते हैं। हमारी दृष्टि ऐसी बन सकती है हीरे में और पत्थर में कोई भेद मालूम न दे। वास्तव में तो भेद है ही नहीं, हीरा भी तो एक पत्थर ही है। वो पत्थर थोड़ा ऊंचा हो गया, महंगा हो गया, तो वो हो गया है, जाति से तो पत्थर ही है। दो वैश्य भाई हैं, एक वैश्य भाई बहुत अर्थ की दृष्टि से कमजोर है, पैसा नहीं है, एक के पास पैसों की कोई था नहीं है। तो जिसके पास अथार धन है उसको लोग ओर दृष्टि से देखते हैं, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत गरीब है, खर्चा भी नहीं चलता, उसको और दृष्टि से देखते हैं। अरे वो जाति में बराबर है, कुल में बराबर है, पर नहीं देखते, धन की तरफ दृष्टि रहती है। परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरों की सेवा करते हो तो ये मत समझो कि हमने किसी आदमी की सेवा की है, या तो आप समझो कि मैंने मेरी ही सेवा की है, मेरी आत्मा है, और या ये समझो कि ये परमात्मा का स्वरूप है, हमने सेवा की। गोपियां अपने घर का काम कर रही हैं और मुंह से कृष्ण का कीर्तन हो रहा है और मन से कृष्ण का ध्यान हो रहा है। कोई मुंह देखकर मुग्ध हो रही है, कोई वियोग में रो रही है, दोनों अवस्थाओं में कितना आनंद है। गोपी घर का काम करती हुई भगवान के विरह में रो रही है। आज तक किसी गोपी को घर के काम की कमी को लेकर उलाना नहीं मिला। हमको भी ऐसा ही साधन करना चाहिए। असली धन, असली रुपया, असली पारस, असली अमृत तो ये साधन भजन है। नर्तन उपाय विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विश्लेही। मनुष्य शरीर पाकर जो विषयों में मन देना है वो अमृत छोड़कर विष का पान करना है। ना ही कबउ भल कहे न कोई, गुंजा गहे पार पारस मणि खोई। कोई पारस मणि को खो करके वो गुंचा गुड़गुचिया वो यदि लेता है तो उसको क्या कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे, चिरमी। चिरमी को तो लिया और पारस को खो दिया। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताए, कालई कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यहां भी आपको विश्वास नहीं है, मरेंगे देखा जाएगा, ये अविश्वास की ध्वनि है। बड़े बड़े महापुरुष जो भगवान में एक चित्त होकर ध्यान लगाते हैं, वे भी मृत्यु के बाद हमारी दुर्गति न हो जाए डरते हैं। अपने लोग बेपरवाह हो रहे, क्या है देखा जाएगा। जो उपाय को नहीं मानता है वो अंधकार में सिर धुन धुन कर पछताएगा। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। सिर्फ विश्वास की जरूरत है। आजकल कथाएं बहुत चलती हैं, हजारों मनुष्य कथा सुनते हैं, सुनते आ रहे हैं, बहुत कथा कहने वाले कहते आ रहे हैं। कल्याण तो परीक्षित का ही हुआ ऐसा मानते हैं। क्यों? क्या परीक्षित नहीं 7 दिन सुनी, हमने नहीं सुनी? परीक्षित का भाव कैसा था, श्रद्धा कैसी थी? परीक्षित की श्रद्धा के पीछे सुखदेव जी को आना पड़ा। श्रद्धा अपने आप सब काम करवा लेती है। जो आदमी व्यापार में उतरता है उस आदमी को धीरे धीरे व्यापार के सब गुर मालूम देने लग जाते हैं। जिस आदमी पर गृहस्थी की जिम्मेवारी आती है वो धीरे धीरे सब बात समझ लेता है, ये ऐसे चलाना चाहिए, स्त्री के लिए ये चीज की जरूरत है, पुत्र के लिए ये है, पिता माता के लिए ये है। ऐसे ही आपकी श्रद्धा हो जाए तो कैसे भजन साधन करें, किस प्रकार से करें, कहाँ करें, क्या इसका उपाय, अपने आप आपके अंदर पैदा हो जाएगी। पहले श्रद्धा की जरूरत है। हम तो कहते हैं संसार में एक एक चीज है वो अनंत लाभ दे सकती है। जितनी श्रद्धा होगी उतना ही लाभ मिलेगा, इसलिए श्रद्धा बढ़ाओ, गीता की राह पर चलो, उसमें श्रद्धा बढ़ाओ, भगवान के अनन्य शरण हो जाओ। गीता जैसा शास्त्र अपने को मिला है, भगवान कृष्ण का स्वरूप हमारे सामने है, गोपियों का आदर्श है, भरत जी का आदर्श है, राम जी की कृपा हमारे सामने है। अब भगवान की तरफ से क्या कमी है कुछ पता नहीं है। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, सारी कमी अपनी तरफ से है। मनुष्य को संसार में आकर कल्याण के लिए ऐसे प्रयत्न करना चाहिए जैसे कोई बहुत कम पैसे वाला व्यक्ति व्यापार में कैसे पैसा बढ़े ऐसा उपाय करता है। व्यापार में यदि कोई थोड़ा सा रुपया उधार दे देता है और वो उसको छूट भी दे देता है कि पैसा ले जाओ, ब्याज हम नहीं लेंगे, तगादा हम नहीं करेंगे, तुम्हारे पास होवे तो दे देना, और यदि तुम्हारा व्यापार डूब जाए, मेरा रुपया डूब भी जाए तो मैं दुख नहीं मानूंगा, तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, व्यापार तुम्हारा बढ़िया चले और वापिस लौटाओगे तो मैं मना नहीं करूंगा, सब प्रकार से छूट दे दे, तो उस आदमी को वो व्यक्ति उम्र भर नहीं भूलता है, परंतु इधर भगवान कितने जोर शोर से कहते हैं, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, तुम्हारा हितेशी हूँ, मैं सबके लिए बराबर हूँ, समूहम सर्वभूतेषु, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप मैं दूर करूँगा, तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना वो भगवान आश्वासन देते हैं, परंतु हम लोगों की श्रद्धा उधर होती नहीं है, ये बहुत कष्ट की बात है। इसलिए नित्य निरंतर भजन करके अपने कल्याण में जुट जाना चाहिए, ये हमारे मानव जीवन का सबसे जरूरी काम है, इस काम में पीछे नहीं रहना चाहिए।
एक एक बार सब संग बीती, तुम जानो हमारे संग बीती, तुम जानो हमारे
संग बीती,
एक एक बार सब संग बीती, एक एक बार सब संग बीती, तुम जानो हमारे संग बीती, तुम जानो हमारे संग बीती। सूर्य चंद्रमा रहता गगन में, सूर्य चंद्रमा रहता गगन में, रहता गगन में, रहता गगन में, गगन लगा उनके संग बीती, गगन लगा उनके संग बीती, तुम जानो हमारे संग बीती, तुम जानो हमारे संग बीती, एक एक बार सब संग बीती, एक एक बार सब संग बीती, तुम जानो हमारे संग बीती, तुम जानो हमारे संग बीती। राम और लक्ष्मण वन में सिधाए, राम और लक्ष्मण वन में सिधाए, वन में सिधाए हो, वन में सिधाए, सीता हरण उनके संग बीती, सीता हरण उनके संग बीती, तुम जानो हमारे संग बीती, तुम जानो हमारे संग बी, एक एक बार सब संग बीती, एक एक बार सभी संग बीती, तुम जानो हमारे संग बीती, तुम जानो हमारे संग बीती। पांचों पांडव संग में द्रौपदी, पांचों पांडव संग में द्रौपदी, संग में द्रौपदी संग में द्रौपदी चीर हरण उनके संग बीती चीर हरण उनके संग बीती तुम जानो हमरे संग बीती तुम जानो हमरे संग बीती एक एक बार सब संग बीती एक एक बार सब संग बीती तुम जानो हम ए संग बीती सूरदास कह सब संग बीती सूरदास कह सब संग बीती सबके संग बीती नैन गहे हमरे संग बीती नैन गहे हमरे संग बीती तुम जानो हमरे संग बीती तुम जानो हमरे संग बीती एक एक बार सब संग बीती एक एक बार सब संग बीती सभी संग बीती तुम जानो हमरे संग बीती तुम जानो हमरे संग बीती तुम जानो हमरे संग बीती।